हम सफर न्यूज रूम से मैं अंबिका, पेश हैं समाचार। आज दिन शुक्रवार, तारीख 13 जून 2025। ऑटवा में उथल पुथल और संयुक्त राज्य अमेरिका की धमकियों से प्रभावित एक लंबे अभियान के बाद क्यूबेक लिबरल इस सप्ताह के अंत में एक नया नेता चुनेंगे, जिससे उन्हें उम्मीद है कि वे पार्टी को वर्षों की जड़ता से पुनर्जीवित कर सकेंगे। लिबरल्स को 2018 और 2022 में फ्रांसवा लेगो की अपस्टार्ट सीएक्यू से लगातार हार का सामना करना पड़ा है। पार्टी ने मॉन्ट्रियल के बाहर के क्षेत्रों में फ्रैंकोफोन वोटर से जुड़ने के लिए काफ़ी संघर्ष किया है और हाल के वर्षों में लेगो की घटती लोकप्रियता से लाभ उठाने में विफल रहे हैं। इसके बजाय संप्रभुतावादी पार्टी क्यूबेकवा ने चुनावों में बढ़त हासिल की है और प्रांतीय विधायिका में 125 सीटों में से केवल 5 पर कब्जा करने के बावजूद अगली सरकार बनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। जनवरी में शुरू हुए अभियान के समय ने पार्टी के लिए जनता का ध्यान आकर्षित करना मुश्किल हुआ, जब पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपना इस्तीफा दिया और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ और की धमकियां सब पर हावी रहीं। इस वक्त लिबरल लीडरशिप में सबसे प्रसिद्ध हैं पाब्लो रॉड्रिगेज, जिन्हें सबसे आगे माना जा रहा है। वे ट्रूडो सरकार में 9 साल रहे हैं और उन्होंने प्रांतीय नेतृत्व की तलाश के लिए पिछले सितंबर में रिजाइन कर दिया था। मई में प्रकाशित आम आबादी के एक सर्वेक्षण में वे अपने प्रतिद्वंदियों से काफी आगे नजर आ रहे हैं। क्यूबेक के पर्यावरण मंत्री ने गुरुवार को कहा कि अगले साल नए नक्शे पेश किए जाने पर बाढ़ क्षेत्रों में स्थित क्यूबेक घरों की स्थिति में 30% की वृद्धि होने की संभावना है। फ्लड मैनेजमेंट के लिए क्यूबेक के नए दिशा निर्देशों पर एक समाचार सम्मेलन में बेनुआ शारे ने कहा कि सरकार का लक्ष्य लोगों और उनकी संपत्तियों की रक्षा करना है और ये सुनिश्चित करना है कि निवासी उन जोखिमों को समझें जिससे वे प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ क्षेत्रों में घरों की संख्या लगभग 25,000 से बढ़कर 35,000 हो जाएगी। नए नक्शे प्रकाशित नहीं किए गए हैं और नया ढांचा मार्च 2025 में ही लागू होगा। शारे ने कहा कि स्टेप वाइज पैमाने पर बाढ़ के जोखिमों की पहचान की जाएगी और लो, मीडियम, हाई रिस्क के लिए इसे अलग अलग क्लासिफाई किया जाएगा। कुछ अन्य समाचारों में, फॉर्मूला 1 ड्राइवर और टीमें इस सप्ताहांत के कनेडियन ग्रैंड प्री के लिए सर्किट गिल्स विलेन्यू में प्रवेश कर रही हैं। मैकलारेन 362 अंकों के साथ चैंपियनशिप में शीर्ष पर हैं और दूसरे स्थान पर फेरारी हैं, जिनके पास 165 अंक हैं। 186 अंक के साथ ऑस्कर पियास्ट्री इस रेस के 10वें इवेंट में ड्राइवर्स की स्टैंडिंग में काफ़ी आगे हैं। आज 2 अभ्यास सत्रों के साथ रेसिंग शुरू होगी, इसके बाद शनिवार को क्वालिफिकेशन और रविवार को एक्चुअल रेस होगी। क्यूबेक प्रांतीय पुलिस ने गुरुवार को एक ऑपरेशन में मॉन्ट्रियल माफिया के कथित प्रमुख लियोनार्डो रिजुटो की गिरफ्तारी की घोषणा की, जिसके बारे में उनका कहना है कि प्रांत में ऑर्गेनाइज क्राइम के अपराध ने एक बड़ा झटका है। दिवंगत प्रतिष्ठित माफिया बॉस वीटो रिजुटो के सबसे छोटे बेटे 56 वर्षीय रिजुटो प्रोजेक्ट अलायंस नामक ऑपरेशन में गिरफ्तार किए गए, जिसमें 11 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये एसक्यू और एसपीबीएम के बीच एक संयुक्त जाँच थी। लियोनार्डो रिजुटो 56 साल के हैं और इनकी पुलिस ने छापेमारी पर एक श्रृंखला के रूप में क्यूबेक में उनके घर में उन्हें गिरफ्तार किया। हालांकि एसक्यू के उपनिदेशक ने कहा कि यह हाल ही के दशकों में सबसे महत्वपूर्ण पुलिस अभियानों में से एक है। रिजुटो 2023 में एक हत्या के प्रयास में बच गए थे, जब उनकी मर्सिडीज को हाईवे पर गाड़ी चलाते समय गोलियों से छलनी कर दिया गया था। अपराधी परिवार के कथित सहनीता 57 वर्षीय स्टेफन ओसेलसिटो को भी उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसराइल ने आज सुबह ईरान पर हमला किया, जिसमें शीर्ष सैन्य अधिकारी मारे गए और परमाणु और मिसाइल हालों को निशाना बनाया गया, जिससे मिडिल ईस्ट के 2 कट्टर विरोधियों के बीच व्यापक युद्ध की संभावना बढ़ गई है। ये 1980 के दशक में इराक के साथ युद्ध के बाद ईरान पर किया गया सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। ईरान के तेजी से बढ़ते परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव बढ़ गया और ईरान ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की, जिसमें सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनी ने कड़ी सजा की चेतावनी देते हुए इसराइल पर ड्रोन का एक झुंड भेजा। इस क्षेत्र के देशों ने इसराइल के हमले की निंदा की है, जबकि दुनिया भर के नेताओं ने दोनों पक्षों से तत्काल तनाव को कम करने का आह्वान किया है। इसराइल की सेना ने कहा कि लगभग 100 टारगेट्स पर शुरुआती हमले में लगभग 200 विमान शामिल थे। 2 सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि देश की मोसाद जासूसी एजेंसी पहले से ही ईरान के अंदर विस्फोटक ड्रोन तैनात करने में सक्षम थी। इसराइली हमले में कई जगहों पर हमला हुआ, जिसमें नतांज में ईरान की मुख्य परमाणु प्रोसेसिंग फैसिलिटी भी शामिल है, जहां से हवा में काला धुआं उठता देखा जा सकता था। सुबह इसराइल ने कहा कि उन्होंने पश्चिमी ईरान में दर्जनों रडार प्रतिष्ठानों पर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल लॉन्चरों को भी नष्ट कर दिया है। मारे गए लोगों में ईरान के 3 टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स, जिनमें से एक पूरे सशस्त्र बलों की देखरेख करते जनरल मोहम्मद बगेरी शामिल हैं। इधर कनाडा के विदेश मंत्री ने रात भर में हमलों के हुए बाद इसराइल और ईरान से तनाव कम करने का आग्रह किया है। आज सुबह मंत्री अनिता आनंद ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि कनाडा इसराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव पर करीब से नजर रख रहा है। तनाव में हालिया वृद्धि तब हुई जब आज सुबह इसराइल ने कई हमले किए, जिनमें ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के 2 शीर्ष अधिकारी मारे गए और ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से जुड़ी जगहों पर हमला किया गया। इसके कई घंटों बाद ईरान ने जवाबी हमलों में 100 से अधिक ड्रोन्स लॉन्च किए हैं। हालांकि अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई है कि कोई भी इजरायली हवाई क्षेत्र में पहुंचा या नहीं। आज के अपने पोस्ट में अनिता आनंद ने दोनों देशों से नागरिकों की रक्षा करने का आग्रह किया और क्षेत्र को स्थिर बनाने का आह्वान किया। इसके अलावा उन्होंने क्षेत्र में मौजूद किसी भी कनेडियन को भी चेतावनी दी है। एरेंडे की एकमात्र जीवित बचे दुर्घटना में अब भी उन ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि वे अब भी जीवित हैं। वे लपटों, मलबे और जले हुए शवों से घिरे हुए थे। भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश लंदन जा रहे थे, जब गुरुवार दोपहर को भारत के शहर अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें मौजूद 240 लोग मारे गए। ऐसा बताया जा रहा है कि ये भारत की सबसे बड़ी एविएशन दुर्घटनाओं में थी। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि वे रमेश इस समय एक स्थानीय सरकारी अस्पताल में शामिल हैं। उन्होंने एक रेडियो को बताया कि जिस समय विमान उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद हवा में फंस गया था, वे किसी तरह से अपने आप को सीट बेल्ट खोल कर विमान से बाहर निकाल सके और बच गए। हालांकि उनके बाएँ हाथ में जलने के निशान हैं और वे अब भी सदमे में हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना स्थल का दौरा किया और वे रमेश से भी मिले। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि कुछ मुख्य अपडेट्स में भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के 3 अधिकारियों ने इस समय दुर्घटनाग्रस्त विमान का एक फ्लाइट रिकॉर्डर पा लिया है, जो एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे परिवारों को विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं। इस बीच बोइंग ड्रीमलाइनर विमान एक मेडिकल कॉलेज के छात्रावास में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें यात्रियों, चालक दल और ज़मीन पर मौजूद मेडिकल छात्रों की मौत से मरने वालों की संख्या कम से कम 290 बताई जा रही है। इस समय अहमदाबाद के हॉस्पिटल्स में 190 से अधिक रिश्तेदारों से DNA के सैंपल्स एकत्र किए जा रहे हैं और दुर्घटना स्थल से निकाले गए शवों से उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार ये एक पीड़ादायक प्रक्रिया है और इसमें 72 घंटे तक का समय लग सकता है। आपको बता दें कि US नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड एक टीम भेज रही है, जो स्थानीय अधिकारियों के साथ उनकी जाँच में मदद करेगी। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा है कि इस वक्त 7878 और 7879 बेड़े पर अतिरिक्त सुरक्षा जांच के भी आदेश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घायलों से मिलने के लिए पास के अस्पताल जाने से पहले पश्चिमी इस क्षेत्र अहमदाबाद में दुर्घटना स्थल का भी दौरा किया। इस बीच टाटा समूह ने यह भी कहा है कि दुर्घटना में मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवारों को वो 1 करोड़ रुपए देंगे, साथ ही प्रभावित चिकित्सा छात्रावास के पुनर्निर्माण में भी मदद करेंगे। ये थे अब तक के समाचार। ज़्यादा समाचारों के लिए जुड़े रहें रेडियो हम सफ़र से।